मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। फ्रेंड्स, मैं आज आप सबसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन पर बात करने जा रहा हूं और यह है कि एमपी और एमएलए अब रिश्वतखोरी के मामले चलाए जाने पर बच नहीं सकेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि इसके बारे में आप पहले से ही पढ़ चुके होंगे और काफी कुछ जान भी चुके होंगे और आपको जानना भी चाहिए क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का। ये दो रूपों में ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नंबर वन, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की दृष्टि से, यानी कि अगर हमें अपने लोकतंत्र के सच्ची आत्मा के अनुरूप अपने देश को सुशासन में लाना है तो सीधी सी बात है कि राजनीति में पवित्रता का होना बहुत जरूरी है और खासकर यदि वो धन संबंधी अपवित्रता है तो उसे खत्म किया ही जाना चाहिए। और जो दूसरी बात है वो इन होल, यानी कि इन जनरल आप कह लीजिए, भ्रष्टाचार की समाप्ति के मामले में, यानी कि यह जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, सिविल सर्विस के टॉपिक के लिहाज से दो जो टॉपिक हैं उनमें काम आने वाला डिसीजन है, एक करप्शन और दूसरा ट्रांसपेरेंसी एंड प्योरिटी इन पॉलिटिक्स, या यूं कह लीजिए कि इन डेमोक्रेसी, राइट। तो आइए अब मामले को देखते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है। डिसीजन जो दिया है उसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर वन कि ये जो डिसीजन आया है ये 7 सदस्यीय संविधान पीठ का डिसीजन है, यानी कि जिन्होंने डिसीजन दिया है जिस पीठ ने उसमें 7 जस्टिस थे, यानी कि बहुत बड़ी बात है 7 जस्टिसों। और पहले यही मामला देखिए 3 सदस्य के बेंच के पास था, फिर वो 5 के पास ट्रांसफर किया गया, फिर 7 के पास ट्रांसफर किया गया। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के दिमाग में ये बात पहले से थी कि ये जो मामला है ये सामान्य मामला नहीं है, इस पर बहुत गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए और बहुत गंभीरता से ज्यादा जजेस के द्वारा विचार किया जाना चाहिए और फिर इस पर फैसला आना चाहिए। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो एक ये भी है कि 7 सदस्यीय संविधान पीठ। और इससे भी बड़ी जो बात है वो ये है कि सभी ने सर्वसम्मति से डिसीजन दिया है। ये बहुत बड़ी बात है, यानी कि इस मामले को लेकर के किसी भी जज के दिमाग में किसी तरह के कोई द्वंद की स्थिति नहीं थी। उनको बिल्कुल चीजें शीशे की तरह साफ दिखाई दे रही थी कि नहीं नहीं ये तो ऐसा होना ही चाहिए। तो दोस्तों, जब सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेज और वो भी 7 जजेज सर्वसम्मति से कोई एक फैसला सुनाते हैं तो उसमें फिर बहुत ज्यादा बातचीत करने की या उस पर शक करने की गुंजाइश खत्म हो जाती है। शक तो हमें वैसे भी नहीं करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर, हाँ उसके औचित्य पर और अनौचित्य पर, उसके प्रभाव पर, ये सब सामाजिक डिस्कशन हो सकते हैं। अब देखिए कि निर्णय क्या है, आप शायद इसकी प्रतीक्षा भी कर रहे होंगे। संविधान पीठ ने, इसे ऐतिहासिक फैसला कहा गया है, संविधान पीठ ने नहीं कहा है, लोग कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, प्रेस कह रहा है, जो विद्वान है वो कह रहे हैं, हिस्टोरिकल जजमेंट अपने आप में ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, जब आप सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करते हैं और ये फैसला करते हैं कि यह टॉपिक या यह जो करंट अफेयर्स का हिस्सा है हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, तब आपको ऐसे ही शब्दों को तो पकड़ना पड़ता है। अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी डिसीजन को ऐतिहासिक फैसला कहा जा रहा है तो सीधी सी बात है कि वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, ऐतिहासिक फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, यदि कोई सांसद या विधायक, सांसद या विधायक कहने का मतलब है लेजिस्लेटर, ठीक है, लेजिस्लेटर, संसद में सांसद होते हैं और राज्य की विधानसभाओं में एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। कोई सांसद या विधायक रिश्वत लेकर, ब्राइब लेकर सदन में, यानी कि संसद के अंदर या विधानसभा के अंदर जिसका भी वो सदस्य है, भाषण या वोट देता है, भाषण देता है या वोट देता है, तो उसके खिलाफ कोर्ट में क्रिमिनल केस चल सकेगा, यानी कि आपराधिक मुकदमा दायर किया जा सकेगा। जब आप ये वाक्य सुन रहे हैं तो आपके दिमाग में एक प्रश्न जरूर आया होगा, हालांकि आप इससे पहले चूंकि इसके बारे में अखबारों में पढ़ चुके हैं तो शायद न भी आए क्योंकि आपके दिमाग को उत्तर मालूम है। अदरवाइज हमारी जो पढ़ने की शैली होनी चाहिए वो इसी तरह से होनी चाहिए जिसे हम बहुत सजगता के साथ पढ़ना कहते हैं, कि जब कोई इस तरह का वाक्य आए तो फिर हमारे दिमाग में प्रश्न उठना चाहिए। यहां प्रश्न क्या उठना चाहिए, तो क्या इससे पहले ऐसा नहीं होता था कि वो रिश्वत लेकर के भाषण दे दें अपने सदन में जाकर के, बकायदे वोट दे आए और उन पर भ्रष्टाचार का मुकदमा चलाया ही नहीं जा सकता था। जी हाँ, पहले ऐसा ही होता था। अब आपको बड़ा अटपटा सा लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है भ्रष्टाचार के मामले में, और वो भी जनप्रतिनिधि ले रहा है, सदन में झूठ बोल रहा है और फिर भी उस पर मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। सोच करके देखिए, बड़ा अजीब सा नहीं लग रहा है? अजीब सा लग रहा होगा, लगना भी चाहिए। तो ऐसा क्यों होता था? ऐसा इसलिए होता था क्योंकि बकायदे हमारे संविधान ने उन्हें कुछ विशेषाधिकार दिए हुए हैं, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस तरह के विशेषाधिकार केवल सांसद और विधायकों के ही नहीं है, बल्कि उन बहुत सारे जिम्मेदारी के पद पर काम करने वालों के लिए होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे होते हैं। जैसे आप देखें कि राष्ट्रपति के अपने अधिकार हैं विशेषाधिकार, प्रधानमंत्री के अपने विशेषाधिकार हैं, जजेस के अपने विशेषाधिकार हैं, यहां तक कि ब्यूरोक्रेट्स के भी अपने विशेषाधिकार हैं, बकायदे संविधान के द्वारा ही प्रदत्त विशेषाधिकार हैं। तो सवाल यह है कि ये विशेष अधिकार क्यों दिए गए? देखिए, नाम है विशेष अधिकार, नागरिकों के भी अपने अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन चूंकि ये नागरिकों के लिए काम कर रहे होते हैं, इनके द्वारा किए गए कामों का प्रभाव समाज पर, नागरिकों पर सीधा सीधा पड़ता है, इसलिए इन्हें कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं। और ये जो विशेषाधिकार है, ये एंजॉय करने के लिए नहीं दिए गए हैं, शान शौकत के लिए नहीं दिए गए हैं। ये विशेषाधिकार इसलिए दिए गए हैं ताकि वे अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वाह कर सकें, यानी कि उन्हें जो अधिकार दिए गए हैं, उन्हें जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, उन अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें, इसलिए उन्हें विशेषाधिकार दिए गए हैं। तो यह मामला है सांसद और विधायकों के विशेषाधिकार का। तो यहां मैं दो अनुच्छेद आपको बता रहा हूं, ये आपको रट जानी चाहिए। हमारे संविधान का एक अनुच्छेद है 105(2), 105(2), और दूसरा अनुच्छेद है 105 और 194, और दोनों के सामने ब्रैकेट में लगा हुआ है 2। यदि आप 2 भूल भी जाएं तो कोई बात नहीं, 105 और 194 ये याद रहना चाहिए। इसके तहत ये व्यवस्था की गई है कि सदन के अंदर दिए गए किसी भी भाषण और वोट के लिए घूस के आपराधिक मुकदमा से उन्हें छूट प्राप्त है। अब आप देखिए, बहुत विचित्र सी बात है, आपराधिक मुकदमा अगर रिश्वत से संबंधित मामला है तो उन्हें इससे छूट प्राप्त है। छूट प्राप्त है का मतलब यह हुआ कि इन्हें छूट प्राप्त है, इसका मतलब यह हुआ कि न तो इनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जा सकती और न इनके खिलाफ कोर्ट में केस चलाया जा सकता है इस तरह के मामलों में। अब आपको क्लियर बात हो गई होगी। तो सीधी सी बात है कि कुछ ऐसा ही मामला रहा होगा जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया है। अब हम देख लेते हैं कि इसमें मामला क्या था। इसमें दोस्तों मामला कुल ये था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक थे, सीता सोरेन विधायक थी आप कह लीजिए, उनकी याचिका पर आया। उनकी याचिका कैसी शुरू हुई कि 2012 में उन्होंने राज्यसभा में वोटिंग करने के लिए एक निर्दलीय सांसद से पैसे लिए थे, ये उनके ऊपर आरोप था। ठीक है, तो जब CBI ने यह मामला दर्ज कर दिया तो सीधी सी बात है कि सीता जो अपने 194(2) का सहारा लेते हुए, क्योंकि विधानसभा से संबंधित है ना, वो MLA थी, उसका सहारा लेते हुए वो बकायदे हाई कोर्ट गई, लेकिन हाई कोर्ट से उन्हें कोई राहत नहीं मिली, तो इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट चली गई, और जब सुप्रीम कोर्ट चली गई तो फिर पहले 3 सदस्यीय बेंच ने सुना, फिर 5 सदस्यीय बेंच ने सुना, और अब 7 सदस्यीय बेंच ने यह मामला सुना दिया है। आपको क्लियर हो गया होगा कि इसके बारे में छूट नहीं दी जा सकती। एक छोटी सी घटना मैं आपको यहां याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों। घटना यह कि कुछ दिनों पहले एक सांसद का नाम सुना होगा, महुआ मोइत्रा, जो तृणमूल कांग्रेस की सांसद थी, उन पर यह आरोप लगा कि उन्होंने प्रश्न पूछने के बदले में पैसे लिए थे। इसकी बहुत चर्चा होती है, नई, बिल्कुल नई बात है। तो इस पर फिर लोकसभा में विचार हुआ, लोकसभा में फिर अपनी कमेटी बनाई, एथिक्स कमेटी, और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, और उस रिपोर्ट पर विचार करते हुए उनकी संसद सदस्यता समाप्त कर दी गई। आपको ध्यान होगा, लेकिन उन पर कोर्ट में केस नहीं चला। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो विशेषाधिकार से सुरक्षित थी। अगर आज की यह स्थिति, अब आगे अगर कभी ऐसी स्थिति आई किसी भी सांसद या विधायक के साथ, तो अब बकायदे कोर्ट में उन पर केस चलाया जा सकेगा। तो ये दो घटनाओं की मैंने चर्चा इसलिए की है ताकि इसमें जो छोटे छोटे जो नुआंसेस हैं, जो छोटी छोटी बातें हैं, जो इसका जो व्यावहारिक पक्ष है, वो आपके दिमाग में बहुत क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, ये घटनाओं के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है, राइट? क्योंकि यह मामला बहुत संवेदनशील है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसा कि मैंने कहा कि ऐतिहासिक फैसला है। तो डेफिनेटली इसके दूसरे पक्ष पर हम लोग आगे बातें करेंगे, और अच्छे तरीके से बातें करेंगे, क्योंकि ये प्री में भी महत्वपूर्ण है, मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण है, और यहां तक कि इंटरव्यू तक के लिए महत्वपूर्ण है, आंसर राइटिंग में तो है ही महत्वपूर्ण। तो फ्रेंड्स, इस विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं और इन्हीं में से एक दोस्त अमित यादव, आपका बहुत बहुत आभार। इसी के साथ ही आज की इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यही समाप्त करता हूं। नमस्कार।